लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह की धर्म शिक्षा माला को जारी रखते हुए सामारी नारी के जीवन पर चिंतन किया। संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा माला में कहा कि निकोदेमुस का यीशु से मिलने पर विचार करने के बाद आज हम यीशु के द्वारा जीवन चौराहे पर खड़ी होकर सही समय की प्रतीक्षा पर चिंतन करेंगे। यहाँ हम उन मिलनों को देखते हैं जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं। शुरू में तो वे हमारे लिए अविश्वसनीय लगते हैं, लेकिन हम विवेकपूर्ण ढंग से उन परिस्थितियों में हो रही घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। हम इस अनुभूति को सामारी नारी के जीवन में भी पाते हैं, जिसका जिक्र संत योहन के सुसमाचार 4 अध्याय में है। वह दोपहर के समय एक व्यक्ति को कुआं के पास आने की आशा नहीं करती है। वास्तव में उस घड़ी वह किसी की आशा नहीं करती है। वह कुआं के पास एक असाधारण समय में पानी भरने जाती है, जब गर्मी अपने चरम पर हो रही होती है। शायद वह नारी अपने जीवन में शर्म का अनुभव करती है। वह अपने में टीका टिप्पणी, दोषारोपण और नासमझी का अनुभव करती है, जिसके कारण वह अपने को अकेली सबों से दूर रखती है। संत पापा अपने धर्म शिक्षा माला में कहते हैं कि गलीलिया से यहूदिया जाने के लिए यीशु किसी और दूसरे मार्ग का चुनाव कर सकते थे, जिससे उन्हें सामारिया से पार होना न पड़ता। यह उनके लिए और भी सुरक्षित होता, क्योंकि यहूदियों और सामारियों के बीच में एक तनावपूर्ण संबंध था। इसके बदले वे वहां से होकर गुजरते हैं और उस कुएं के पास रुकते हैं। ठीक उस समय में यीशु हम सबों की प्रतीक्षा करते हैं और वे हमें अपने को उस समय पाने देते हैं जब हम अपने लिए किसी भी आशा को बचा नहीं पाते हैं। कुआं प्राचीन मध्य पूर्वी प्रांत में मिलन का एक स्थल होता था, जहां कई बार शादियां तय होती थीं। वह मंगनी का स्थल था। यीशु उस नारी को प्रेम की चाह को सही अर्थ में समझने हेतु मदद करने की चाह रखते हैं। इस मिलन को समझने हेतु चाह के विषय वस्तु को हम मूलतः पाते हैं। यीशु सर्वप्रथम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, मुझे पानी पिला दो। वार्ता की पहल करते हुए यीशु अपने को कमजोर स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जिससे दूसरा व्यक्ति अपने में सहज महसूस कर सके। वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह अपने में भयभीत ना होती हों। प्यास को हम धर्म ग्रंथ में बहुधा चाह की निशानी स्वरूप व्यक्त पाते हैं, लेकिन यहाँ यीशु सर्वप्रथम उस नारी की मुक्ति की चाह रखते हैं। संत अगुस्टिन कहते हैं, वह जो पानी की मांग करता है वह उस नारी के विश्वास की चाह रखता है। संत पापा ने कहा कि जबकि निकोदेमुस रात के समय में यीशु के पास आया, यहाँ हम यीशु को दोपहरी के समय नारी से मिलता हुआ पाते हैं, उस समय जब अत्यधिक प्रकाश था। यह हमारे लिए एक रहस्य का प्रकटीकरण है। यीशु उसे अपने को मुक्तिदाता के रूप में प्रकट करते हैं। इसके साथ ही वे अपने जीवन के बारे में बतलाते हैं। वह उसे अपने जीवन इतिहास को पुनः पढ़ने हेतु मदद करते हैं, जो अपने में जटिल और दर्द भरा है। उसके 5 पति हैं और इस समय वह 6वें के साथ रहती जो उसका पति नहीं है। नंबर 6वां अपने में अनायास नहीं है, बल्कि यह अपने में साधारणतः अपूर्णता की ओर इंगित कराता है। शायद यह 7वें पति की ओर इशारा करता है, जो अंततः उस नारी में सच्चे प्रेम की चाह को परिपूर्णता प्रदान करेंगे, और वे दुल्हे केवल यीशु हो सकते हैं। श्रोताओं, जब उस नारी को यह अनुभव होता है कि यीशु उसके जीवन को जानते हैं, तो वह अपनी वार्ता की विषय वस्तु को बदलती और वह धार्मिक सवाल करती है जो यहूदियों और सामारियों में विभाजन का कारण बना। यह कभी कभी हम सबों के साथ भी होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, उस समय जब ईश्वर हमारे जीवन का स्पर्श करते हैं, जहां हम अपनी समस्याओं को देखते हैं, तो हम ऐसे चिंतन में खो जाते हैं जो हमें एक सफल प्रार्थना करने का भ्रम देती है। वास्तव में हम अपने को सुरक्षा के घेरे में रखते हैं, यद्यपि ईश्वर उन सारी चीजों से बड़े हैं, और उस सामारी नारी के लिए जिसके संग परंपरा के अनुसार उन्हें बातें नहीं करना था, वे सबसे बड़े रहस्य का उद्भेदन करते हैं। वे उसे पिता के बारे में कहते हैं जिसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करने की मांग की जाती है, और जब वह पुनः आश्चर्यचकित होती तो इन सारी बातों के लिए मसीह की प्रतीक्षा करने की बात कहती है। तो यीशु उसे कहते हैं, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यह एक प्रेम की घोषणा के समान है। वह जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रही हो वह मैं हूँ, जो तुम्हें प्रेम की पूर्णता प्रदान कर सकता है। श्रोताओं, उस परिस्थिति में वह दौड़ते हुए गांव वालों को बुला लाती है, क्योंकि प्रेरिताई की शुरुआत मुख्यतः प्रेम किए जाने की अनुभूति से शुरू होती है। वह किन बातों की घोषणा कर सकती थी अगर उसे अपने में इस बात का अनुभव न होता कि वह समझी गई, उसका स्वागत किया गया और उसे क्षमा मिली। यह एक ऐसी निशानी है जो हमें सुसमाचार प्रचार करने के नए तरीकों की खोज पर विचार करने को प्रेरित करती है। संत पापा ने कहा कि प्रेम में पड़े एक व्यक्ति के जैसे सामारी नारी अपने घड़े को भूल जाती है, वह उसे यीशु के चरणों में छोड़ देती है। घड़ा का भार जब वह अपने घर को लौटती, हर समय उसे अपने जीवन स्थिति, उसकी पीड़ित जीवन की याद दिलाती है, लेकिन अब वह घड़ा यीशु के चरणों में वह छोड़ देती है। अतीत उसके लिए भार की तरह नहीं रह जाता है, वह अपने में क्षमा किए जाने का अनुभव करती है। यह हमारे लिए भी है। संत पापा ने कहा, सुसमाचार की घोषणा हेतु सर्वप्रथम हमें अपने इतिहास के भार को यीशु के चरणों तले रखने की जरूरत है। हमें अपने अतीत के बोझ को यीशु को समर्पित करने की जरूरत है। केवल मेल मिलाप किए गए लोग सुसमाचार के वाहक होते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम अपनी आशा ना खोएं। यद्यपि हमारा इतिहास हमें भारी, जटिल और हमें बर्बाद किया लगता हो, हमारे पास सदैव यह संभावना रहती है कि हम उसे ईश्वर को सौंप दें और अपनी यात्रा पर नए सिरे से निकल पड़ें। ईश्वर दयालु हैं, वे हमारा इंतजार करते हैं।
आशा की किरणें हर जन मन में फैला, यीशु का संदेश दुनिया में ला। आशा की किरणें हर जन मन में फैला, यीशु का संदेश दुनिया में ला। अंधेरे को शाप देने से भला, सत्कर्मों से दीप जला। अंधेरे को शाप देने से भला, सत्कर्मों से दीप जला। आशा की किरणें हर जन मन में फैला, यीशु का संदेश दुनिया में ला। सबका भला कर, सब देश में जा, मानो सिवाय तेरे कोई न दूजा। सबका भला कर, सब देश में जा, मानो सिवाय तेरे कोई न दूजा। तेरी मुस्कान करेगी शुरुआत, जग में शांति का एक नया स्रोत। तेरी मुस्कान करेगी शुरुआत, जग में शांति का एक नया स्रोत। आशा की किरणें हर जन मन में फैला, यीशु का संदेश दुनिया में ला। सदा तेरी ज्योति इस भांति चमके, तेरे कारण सब जन प्रभु गुण गाए। सदा तेरी ज्योति इस भांति चमके तेरे कारण।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के ऐतिहासिक विश्व पत्र एवांजेलुम विताए की 30वीं वर्षगांठ के लिए लोकधर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठ्य विभाग ने जीवन हमेशा अच्छा होता है शीर्षक एक प्रेरितिक रूपरेखा प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि मानव जीवन की प्रेरितिक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए कलीसिया के प्रयासों को कैसे शुरू किया जाए और आगे बढ़ाया जाए, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में इसका बचाव, सुरक्षा और प्रचार करना है। 25 मार्च को एवांजेलुम विताए की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर लोकधर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित विभाग ने विश्व पत्र के 31वें पैराग्राफ से जीवन हमेशा अच्छा होता है शीर्षक एक प्रेरितिक रूपरेखा प्रकाशित की, जिसमें बताया गया है कि कलीसिया किस तरह मानव जीवन के प्रेरितिक देखभाल को बढ़ावा दे सकती है, जिसका उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र और सांस्कृतिक संदर्भों में इसका बचाव, सुरक्षा और संवर्धन करना है, खासकर जहां मानव अधिकारों का अक्सर उल्लंघन होता है। विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल केविन फेरेल ने इस कार्य का परिचय देते हुए बताया कि किस तरह सभी परिस्थितियों और अवस्थाओं में जीवन की सुरक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे समय में जब मानव गरिमा का अत्यंत गंभीर उल्लंघन हो रहा है तथा कई देश युद्ध और सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है, विशेष रूप से हमें महिलाओं, जन्म लेने से पहले और बाद में बच्चों, किशोरों, विकलांग लोगों, बुजुर्गों, गरीबों और प्रवासियों के जीवन की वास्तविक देखभाल करनी होगी। हर व्यक्ति के जीवन का हमेशा सम्मान, सुरक्षा और बचाव किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत जो केवल तर्क से ही नहीं पहचाना जा सकता, हर देश, गांव और घर में लागू किया जाना चाहिए। इस कारण से विभाग प्रत्येक धर्माध्यक्ष, पुरोहित, धर्मसंगी पुरुष, महिला और लोकधर्मी को इस प्रेरितिक ढांचे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कर्मचारियों, शिक्षकों, माता पिता, युवा लोगों और बच्चों को हर मानव जीवन के मूल्य का सम्मान करने के लिए सही प्रशिक्षण प्रदान करता है। उधर वाटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में 2009 में रसायन विज्ञान के नोबल विजेता डॉक्टर वेंकटरामन रामकृष्णन ने जीवन के लिए परम धर्म पीठे अकादमी द्वारा आयोजित वाटिकन दीर्घायु शिखर सम्मेलन के महत्व पर विचार किया और दीर्घायु के सरल सुझावों पर भी चर्चा की, जो संत पापा को उनके स्वास्थ्य लाभ के दौरान भी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर वेंकटरामन जीवन के लिए पोंटिफिकल अकादमी के वाटिकन दीर्घायु शिखर सम्मेलन समय की घड़ी को चुनौती देना में भाग लेने के लिए वाटिकन आए थे, जो सोमवार 24 मार्च को दोपहर में रोम में पोंटिफिकल पैट्रिस्टिक इंस्टीट्यूट अगुस्टिनियम में हुआ था। स्वास्थ्य लंबा जीवन जीने और विशेष रूप से स्वास्थ्य जीवन जीने के मामले में उनकी विशेषज्ञता की इस तरह की प्रवृत्ति में योगदान देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैंने हम क्यों मरते हैं नामक एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक लिखने की प्रक्रिया में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक मध्यम और स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद की तिकड़ी तीन बातें शायद आज बाजार में उपलब्ध सप्लीमेंट या दवाओं से बेहतर है। अब इसमें आप सामाजिक अलगाव से बचना और जीवन में उद्देश्य की भावना रखना जोड़ सकते हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये दोनों ही बुढ़ापे में मृत्यु दर और स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि लोग कर सकते हैं, जबकि पूरा बायोमेडिकल अनुसंधान प्रतिष्ठान अधिक शक्तिशाली हस्तक्षेपों के साथ आने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा, हर कोई जानता है कि संत पापा बहुत बीमार थे और अभी अभी ठीक हो रहे हैं। वे 88 साल के हैं और मैं कहूंगा कि उन्हें अपने डॉक्टरों की सलाह का पालन करने की जरूरत है, लेकिन जैसे जैसे वे ठीक होते जाएंगे, मैंने जो तिकड़ी सुनाई है वह उनके लिए भी काम करेगी, ठीक वैसे ही जैसे किसी और के लिए। उधर कल गाजा पट्टी के कई स्थानों पर हमास के खिलाफ अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन हुए, जहां उग्रवादियों द्वारा तितर बितर किए जाने से पहले लोगों ने जोरदार तरीके से युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया। यरूशलेम में भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिन्हें इजरायली मूल्यों के प्रति गद्दार कहा गया। फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष के सलाहकार महमूद एल हबाश ने कहा, गाजा पट्टी में प्रदर्शन हमास की नीतियों के खिलाफ निवासियों की पुकार है। उन्होंने कहा कि इसका समाधान पट्टी पर PNA नियंत्रण बहाल करना होगा। हमें हमास को सत्ता से हटाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता द्वारा कल दैनिक समाचार पत्र लस तांपा में दिए गए अनुमान के अनुसार 18 मार्च को पुनः युद्ध शुरू होने के बाद से मैनहट्टन के आकार वाले क्षेत्र में इजरायली बलों के निकासी आदेशों के बाद 120,000 फिलिस्तीनियों को पहले ही अपने घर छोड़ने पड़े हैं। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले जारी हैं। आज सुबह तड़के इजरायली रक्षा बलों द्वारा किए गए हवाई हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए। अल जजीरा ने बताया कि पीड़ितों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सऊदी अरब में 2 दिवसीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौते की घोषणा के बाद यूरोप के मध्य में युद्ध विराम निकट प्रतीत होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वास्तविक प्रगति की बात करते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की सतर्कतापूर्वक संतुष्ट हैं, जबकि रूस ने दोहराया कि वह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चर्चा करके ही वार्ता जारी रखना चाहता है। काला सागर में युद्ध विराम, ऊर्जा संरचनाओं पर हमलों पर रोक तथा तीसरे पक्ष के देशों को समझौतों की निगरानी के लिए हरी झंडी, ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए नाजुक समझौता टिका हुआ है, जो सऊदी अरब के रियाद में 2 दिनों की कठिन वार्ता के बाद हासिल हुआ है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।